हैं, अशांति का, हलचल का वातावरण बढ़ता जा रहा है। उन दोनों के बीच में बाबा भी हमें अपने वाइब्रेशन से, श्रीमत से टच करता रहता है। और जो अच्छी तरह फील करता है, अनुभव करता है, वो कैच करके अप्लाई करता है। अगर देखें मैचेस में, स्पोर्ट्स में, जो खिलाड़ी फील्ड करते रहते हैं, उनको भी अगर बॉल को कैच करना है, बहुत ऊपर से बॉल आ रही है, तो वो खिलाड़ी भी, फील्डर भी पहले अपने को एडजस्ट करेगा, देखेगा, डायरेक्शन देखेगा, बॉल आएगी, टच होगी और फिर कैच करेगा। कभी कभी ये भी होता है, टच होते हुए भी कैच कर नहीं पाता, कैच ड्रॉप हो जाता है, और वो कैच बहुत इम्पोर्टेंट रहता है उस समय। इसी तरीके से बाबा भी हमें परमधाम से वाइब्रेशन देता रहता है। अगर हम देखें यज्ञ में, यज्ञ का कंस्ट्रक्शन जो हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ब्रह्मा बाबा को शिव पिता ने कई दृश्य दिखाए, टच कराया, और ब्रह्मा बाबा ने उनको प्रॉपर कैच करके कंस्ट्रक्शन किया और यज्ञ फॉर्मेशन हुआ। समय समय पर भी कई बातें अलग अलग माध्यम से टच कराई गई और यज्ञ आगे बढ़ता गया। अब इस समय जो चैलेंजेस आ गए हैं, अनादि काल का जो पीरियड चल रहा है, समय वहां पहुंच गया है जहां हमें खुद को, आत्मा को निराधार होना पड़ेगा। बाबा जो भी टेक्निक बता रहा है, हमें सिखा रहा है, उसका मुख्य फाउंडेशन यही है कि हम सब आत्माएं निराधार हो जाएं। हम किसी आधार को पकड़कर आगे न बढ़ें। ये ज्ञान का पूरा प्ले है, मैच है, जो बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बन जाए। स्मृति स्वरूप का अर्थ ही है कि मेरे को सब स्मृति में आ गया। मैं कौन हूं, मेरे को कहाँ जाना है, मेरा घर कौन सा है, और मेरे को सुखधाम आना है। सब स्मृतियां जागृत हो गई, एक्टिवेट हो गई। अब इस खेल में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, टचिंग एंड कैचिंग पावर। टच भी उसको ही होगा जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, जो अंदर और बाहर साफ है, मन बुद्धि साफ, सच्चाई दोनों हैं, केयरफुल भी है और केयर फ्री भी है, दोनों का ब्लेंडिंग है। अगर देखें पूरे ज्ञान में गेम किसका हो रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन कौन सा है, वो लेसन है पहला, आत्मा का। मैं कहूं अगर ये लेसन क्लियर है तो बाकी लेसन क्लियर होंगे। आत्मा मन बुद्धि संस्कार से जो बनी हुई है, तीनों का इंटरैक्शन होता रहता है, मन बुद्धि संस्कार इंटरप्ले करती है। अगर मन में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत थॉट्स हैं, संकल्प हैं, संकल्पों की गति फास्ट है, ओवर क्राउडिंग है, जो आज का मेजर प्रॉब्लम है, तनाव का मुख्य कारण आज के समय में कोरोना के बाद, प्री ऑक्यूपाइड माइंड, मन में कई तरह की फाइल्स हैं, क्राउडेड है, एक नहीं हजारों फाइलें खुली हुई है। अब अगर इतनी फाइल खुली हुई है तो बुद्धि भी कंफ्यूज हो जाती है और फिर तनाव का मुख्य कारण आ जाता है ड्वेलिटी। ड्वेलिटी का अर्थ है मन कुछ सोच रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है। मन और बुद्धि में कन्फ्लिक्ट चालू होता है, करूं या ना करूं, करूंगा तो क्या होगा, और इस ड्वेलिटी में पूरी जिंदगी निकल जाती है कईयों की। और अगर इस ड्वेलिटी को ठीक कर लिया, मन और बुद्धि एक साथ काम कर रहे हैं, मन सोच रहा है, बुद्धि कह रही है कर, मन ने सोचा, बुद्धि ने किया, संस्कार बीच में नहीं आ रहे। तो वो आत्मा को नेचुरल टचिंग पावर और कैचिंग होगा, क्योंकि परमात्मा रिसोर्स है, एनर्जी है, परमधाम में कंटिन्यूस उसके वाइब्रेशन चल रहे हैं, उसके नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, उसका नेटवर्क क्लियर है। जो बाबा ने कहा वॉइसलेस ही वायरलेस है, वो तो कंटिन्यूस दे रहा है, 24 घंटे दे रहा है, अवेलेबल है, उसकी एनर्जी वेव्स आ रही हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ आता है, हमारे नेटवर्क में। अगर हमारे नेटवर्क में घंटी बज रही है, हम उठा ही नहीं रहे, तो प्रॉब्लम किसका हुआ, हमारा हुआ। और उस नेटवर्क को ठीक रखने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर होना चाहिए, सच्चाई सफाई होना चाहिए, व्यर्थ संकल्प कम से कम चले, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स कम से कम चले। वही ओवर क्राउडिंग करते हैं, वही ड्वेलिटी लाते हैं, मैं वही कर रहा हूं, मेरा संकल्प वही हो रहा है जो इस समय होना है, इस समय मेरे को वही संकल्प आ रहा है जो अभी होना है, फ्यूचर को कैच कर रहा हूं, विघ्न को पहले से कैच कर रहा हूं। बाबा ने कहा विघ्न तो आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, एंड तक आएंगे, इसीलिए बाबा ने कहा 5 मिनट पहले भी मैं नहीं बताऊंगा क्या होने वाला है, 1 मिनट पहले भी नहीं बताऊंगा क्या होने वाला है। अगर वो होता तो कितना अच्छा था, सुबह रिकॉर्डिंग आ जाए आज तेरे साथ ये होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे तूफान आता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, पहले से वो कैच कर लेते हैं, काफी बचाव कर लेते हैं, नुकसान को कम कर देते हैं। अब ह्यूमन सॉफ्टवेयर में नेटवर्क है, सिग्नल आते हैं और वही सिग्नल हमारे आत्मा से ब्रेन के द्वारा शरीर में जाते हैं। शरीर में 150,000 प्रोटीन्स हैं, 50 to 70 trillion सेल्स हैं और जो सिग्नल जाते हैं वही प्रोटीन को ठीक करते हैं और डैमेज करते हैं। अगर प्रोटीन्स डैमेज होते हैं तो बीमारी आती है। हाथ उठाएं, खड़े हो जाएं, थोड़ा मैं देख रहा हूं थोड़ा थके हुए हो आप, वापस आते हैं। कैचिंग पावर, बेसिक मीनिंग क्या हुआ, वाइब्रेशन आ रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहे हैं, प्रकृति के भी आ रहे हैं, मैं उनको पहले से ही फील कर रहा हूं। विघ्न आने के पहले मेरे को पता लग रहा है कुछ होने वाला है और मैं विघ्न को पहले ही ठीक कर देता हूं। बाबा ने एक मुरली में कहा, विघ्न आए उसको ठीक करें तो टाइम निकल जाता है, पर अब ऐसा क्रिटिकल समय है कि कहां कौन आत्मा किधर होगी उस समय पता नहीं, और उस समय केवल यही काम आएगा मेरा टचिंग और कैचिंग पावर कैसा, मैं किसी भी स्थिति में उसको कैच कर लूंगा। इसलिए बाबा बार बार कहता है, योग चलते फिरते बैठते सब जगह करो, कर्म योग को बढ़ाते जाओ, कर्म भी करना है योग भी करना है, क्योंकि पहला मंत्र यही है, याद की यात्रा। मेरी याद कितनी पावरफुल है, मेरे संकल्प कितने श्रेष्ठ शुद्ध हैं, वही कैच करते हैं। और संकल्पों का ही खेल है, जो हमारे संकल्प जा रहे हैं पूरे यूनिवर्स में वही संकल्प हमारे पास आ रहे हैं रिटर्न में। जैसा मैं सोचूंगा वही होगा, अगर पॉजिटिव सोच रहा हूं तो पॉजिटिव होगा। इसीलिए ये यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स एक इटर्नल डांस है कॉन्शियसनेस का, चेतना का। जितना मैं चेतन हूं, जितना मेरी चेतना काम कर रही है, जितना मैं अवेयर हूं, जितना मैं कॉन्शियस हूं, उतना मैं कैच करूंगा। आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई कॉन्शियसनेस। आप देखते हैं आजकल परिस्थितियां कितनी बदल गई है। उस दिन मैं एक देख रहा था, एक को रोड क्रॉस जा रहा है, एक गाड़ी वाला जा रहा है, दूसरा जा रहा है, उसको क्रॉस करना है, उसको जगह क्रॉस करने की शायद नहीं मिली, वो उतर कर उसको मार दिया। ये खेल अभी बड़ा क्रिटिकल हो गया है क्योंकि लोग सेंसिटिव हो गए, और अब खेल क्या हो गया है, खुद पर आ गया है। और इस समय इसीलिए हमें बहुत जरूरी है परखने की शक्ति अच्छी होगी, तभी हम निर्णय ले पाएंगे, डिसीशन ले पाएंगे। अगर मेरा कैचिंग पावर अच्छा है, टचिंग पावर अच्छा है, तब तो मैं निर्णय लूंगा, तब तो मैं परखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। एक सेकंड का गेम होता है और उस एक सेकंड के गेम में मैंने ठीक किया तो ठीक, नहीं किया तो प्रॉब्लम। तो इसीलिए हमें अपने वाइब्रेशन को, मनसा सेवा को पावरफुल बना के रखना। हाथ ऊपर करें, कहें सब ठीक है, आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ। खुद को जागृत अवस्था में रखना ही मेडिटेशन है। बार बार अपने को देखो, चेक करो, मेरे थॉट्स बहुत तेजी से तो नहीं चल रहे? अगर बहुत तेजी से चल रहे हैं तो ब्रेन की वेव्स में भी परिवर्तन आ जाता है। ब्रेन में भी स्लो वेव्स होती हैं, फास्ट वेव्स होती हैं। बीटा और गामा फास्ट होती हैं, डेल्टा थीटा अल्फा स्लो होती हैं। और जितना हमारी वेव्स रिदम पर चलती है यूनिवर्स के, तो हम टचिंग पावर और कैच कर लेते हैं। हमें टच होगा, ऑटोमेटिक होगा। और इसकी प्रैक्टिस हमें करते रहना है, जो बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास काम आएगा, एक दिन में नहीं होगा। मुझे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है। बीच बीच में अपने को बिल्कुल हल्का छोड़ दो, डिटैच कर लो। उस समय देखें मेरे संकल्प की गति क्या है। संकल्प की गति ब्रीदिंग से भी कंट्रोल होती है। सांस को धीरे धीरे लिया, छोड़ा, जब मैं ये प्रैक्टिस करते रहूंगा अशरीरी की, कर्मातीत की, तो ऑटोमेटिक मेरे को वो वाइब्रेशन आते रहेंगे। स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों का मैं स्वराज्य अधिकारी बनूं, क्योंकि इंद्रियां ही कंफ्यूज करती है। इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, हमारे सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन कहां से आती है, आत्मा में कहां से आती है? आंखें, दूसरा कान, ये दो मेन है, तीसरा फीलिंग्स, स्किन, ये सब इंफॉर्मेशन दे रही है। कईयों की आंखें नहीं होती, कान से सुन नहीं सकते, फिर भी इंफॉर्मेशन उनके अंदर आती रहती है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, उसको 1963 में मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई और कंप्लीटली बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, व्हीलचेयर पर और गर्दन लटकी हुई, पर इलेक्ट्रॉनिकली उसको कनेक्ट किया गया था, खाना, कंप्यूटर, और उसको जो संकल्प आते थे वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट रहा। 1963 में डॉक्टर्स ने कहा 2 साल 3 साल, वो 2018 तक जिया और कई बुक्स लिखी साइंस की। तो क्या काम कर रहा था वो, वाइब्रेशन आते हैं। और उनको पकड़ना वो हमारा काम है। हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5ों से जा रही है। ब्रेन के एक एरिया में जाती है पहले, इमोशनल ब्रेन पर, और फिर वहां से हायर ब्रेन पर जाती है, फिर वापस हम एक्ट करते हैं। इसीलिए अगर हम इंफॉर्मेशन बहुत ले रहे हैं किसी भी तरह की, तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगा और तरह तरह की फाइल्स खुली रहेंगी। इसलिए आज के मुरली में भी बाबा ने क्या कहा, कब्रिस्तान है, बीच बीच में प्रैक्टिस करो, सब मरे हुए पड़े। एक एक मिनट की मैं भी करता हूं, एक एक मिनट की प्रैक्टिस करो, जिसको मैं कहता हूं जीरो, जीरो लेवल। जीरो लेवल क्या, जो हमारी अनादि स्वरूप की स्टेज है, परमधाम वाली स्टेज है, उस स्वरूप में टिक गया। परमधाम में कुछ नहीं होता, हलचल नहीं होती, वहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती। आत्मा जैसे पड़ी है अपने सेक्शन में, उस स्वरूप में टिके। कुछ मत कहो अपने को, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, कुछ नहीं, बस टिक गया। जब मैं उस अनादि स्वरूप में टिक जाता हूं तो मेरा कनेक्टिविटी यूनिवर्स से हो जाता है, पांच तत्वों से हो जाता है, ऑटोमेटिक रिदम पे बॉडी काम करती है। फिर वही संकल्प आएगा जो इस समय मुझे करना है। तो जो संकल्पों की हलचल होती है वो खत्म होती जाएगी। ओवर थिंकिंग नहीं करें, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएं, जिससे मन और बुद्धि दोस्त हो जाएं, दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सूक्ष्म है मन बुद्धि संस्कार में? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बुद्धि। बुद्धि मन को भी बुद्धि कंट्रोल करती है। मन का काम है विचार पैदा करना, दिव्य चक्षु देखना। बुद्धि क्या करती है? दिव्य विमान है, डिवाइन इंसाइट है। बुद्धि शार्प है, इसीलिए कहते हैं ना कि बुद्धि मुझे शार्प दो। मन शांत, मन को क्या कहते हैं? शांत। बुद्धि क्या? क्लियर। और जिसकी क्लियर बुद्धि होती, शांत मन होता है, वो वर्ल्ड में भी टॉप पर चला जाता, बिलियनर बन जाता। अभी मैं एक डॉक्टर का देख रहा था, केरला की डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस के लिए उसने एंट्री करी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। एक दिन वो कपड़े टांग रही थी हॉस्टल में, फ्लोर गीला था, स्लिप मार गई और नीचे गिरी, उसका बॉडी का पैरालिसिस हुआ, स्पाइनल डैमेज हुआ, यहाँ का हुआ, नीचे का हुआ। पर उसका था कि मेरे को डॉक्टर बनना ही है। सर्जरी हुई, फिजियोथेरेपी हुई और फिर वापस आकर फिर से मेडिकल में अपीयर हुई, एग्जाम पास की और डॉक्टर बन गई। व्हीलचेयर पर ही है। अब आप देख लो, वाइब्रेशन कितने पावरफुल होते हैं और वो हमें मिलते जा रहे हैं। बाबा का सोर्स कंटिन्यूस काम कर रहा है, खाली मेरा काम है उसको लेना, उसको परसीव करना और उसको अप्लाई करना। ज्ञान सुनना नहीं है, सुनकर उसको अप्लाई करना है, उससे मैच खेलना है। जितना मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा उतना रिजल्ट आएगा और जितना रिजल्ट आएगा उतना अनुभव बढ़ेगा और जितना अनुभव बढ़ेगा उतनी खुशी होगी और वो तब आता है जब मैं एकांतवासी बनूं, इकोनॉमी करूं। इकोनॉमी का अर्थ क्या हुआ? एक के अंत में टिकूं, एक ही संकल्प शक्ति गुण को लगाऊं। एकाग्रता कुछ भी कर सकती है, मिरेकल कर सकती है। मुझे याद आ रहा है 1997 दादी जानकी जी और यूरी गैलर, एक साइकोपैथ था, दोनों बैठ गए। एक अल्बर्ट हॉल लंदन का था, कंप्यूटर से दोनों को कनेक्ट कर दिया और दोनों की ब्रेन वेव्स कंप्यूटर में आ रही हैं। यूरी गैलर साइकोपैथ था, अगर वो इसको देख रहा है कंटिन्यूस तो ये बैंड हो जाएगा। चम्मच को देख रहा है तो चम्मच को मोड़ देगा, इतना उसकी एकाग्रता थी। दोनों दादी जी और यूरी गैलर एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे बैठे हैं। 45 मिनट के बाद दोनों की ब्रेन वेव्स एक जैसी हो गई। अल्फा वेव दादी में भी थी और यूरी गैलर में भी थी। इसका अर्थ क्या हुआ? हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैं साइलेंट में हूं, एकाग्र हूं, तो मैं अपने वाइब्रेशन ट्रांसफर कर सकता हूं और वो मैं पहले ही पढ़ लूंगा, जज कर लूंगा इसको क्या चाहिए। जो बाबा ने कहा पल्स देखकर देना है, तो अगर मैं पहले से ही परख रहा हूं, जज कर रहा हूं किसको क्या चाहिए, वो सक्सेसफुल होगा, वो सेवा में टॉप पर जाएगा, उसकी एनर्जी कम खत्म होगी। अब भागने वाली सेवा कम होती जा रही है, अब सेवा काय की हो गई है। एक जगह बैठकर आप ट्रांसफर कर रहे हो और किस आत्मा को क्या चाहिए वो दे रहे हो। हर एक को अलग अलग चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को शांति चाहिए, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब वो रिक्वायरमेंट मैं तब कैच कर पाऊंगा जब मैं साइलेंट में हूं। इसलिए साइलेंस की प्रैक्टिस करते रहो। साइलेंस का अर्थ है जीरो लेवल। चाहे मुख से बोल रहा हूं पर यहां से शांत हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, सब कर रहा हूं पर यहां अल्फा लेवल है। एक किसान, मैं और क्लियर करके देता हूं, एक किसान खेत पर काम कर रहा है, शाम का समय है, उसने घड़ी पहन रखी है, घड़ी में आवाज आती है टक टक टक, वो वाली घड़ी है। घड़ी खेत में गिर जाती है, ढूंढता है पर नहीं मिलती। घर आता उसका लड़का पूछता है क्या हो गया, बोला घड़ी थी वो गिर गई, मिली नहीं, अंधेरा होने का टाइम था। लड़का बोलता है मैं जाता हूं। लड़का खेत पर गया और पिताजी से पूछ लिया अप्रॉक्सीमेट कहां गिरी थी। वहां जाकर शांत खड़ा हो गया, साइलेंस में, जीरो पर। और जैसे ही जीरो पर गया, टक 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 आवाज आने लगी और घड़ी उसको मिल गई। तो ये टक टक क्या है? आत्मा की टक, परम धाम की टक, परमात्मा की टक। अनहद अनहद शब्द चलता रहता है। अगर उसको पकड़कर मैं उससे खेलता हूं तो वही अति इंद्रिय सुख है, क्योंकि हर आत्मा में अति इंद्रिय सुख डला हुआ है। वो अगर हमें नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम आते हैं। जो आज की दुनिया में डिप्रेशन एक मेजर प्रॉब्लम है, उसका भी कारण यही है कि कहीं ना कहीं उसको आंतरिक खुशी, शांति, अनहद नहीं मिल रहा है। सब है, ज्ञान में भी है, पर वो चीज नहीं मिल रही है जो उसको आत्मा को चाहिए। इसलिए बीच बीच में डिटैच हो जाओ। जीरो लेवल पर जाओ, जिसको मैं इंग्लिश में कहता हूं पॉस। पॉस का अर्थ है रुक गए। सुबह उठा, चाय पीते पीते पॉज, नेचर को देख रहा हूं, पक्षी को देख रहा हूं, तो जितना यहां का हलचल मन और बुद्धि का खत्म होता जाएगा, बुद्धि खुद ही काम करना शुरू करेगी। उसको वो वाइब्रेशन आते रहेंगे जो उसको करना है। इसकी ट्रेनिंग बाबा हमें देता जा रहा है, और जो मेथड आपको अच्छी लगे वो करो। बीच बीच में फरिश्ते की प्रैक्टिस करो। फरिश्ता क्या है? लाइट। शरीर यहां है, वो घूम रहा है सेवा करके आ गया। फरिश्ता बोल नहीं रहा है। हम लोग क्या है? बोलने के, आवाज सुनने के हैबिट में आ गए हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कोरोना में बड़ा टेंशन हो गया था, एंजाइटी हो गई थी, कुछ आवाज ही नहीं थी, कोई एक्शन ही नहीं था, शांत बैठे रहना पड़ता था बड़ा। अब बाबा क्या ट्रेनिंग दे रहा है? कुछ भी होए, मेरे को हर हालत में अपने को एंजॉय करना है। एक्टिविटी है, एक्शन है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मैं अपने को खुद को एंजॉय कर रहा हूं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। उसकी तैयारी मेरे को धीरे धीरे करना है, जिसको कहते हैं निराधार, इंडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट बाहर, इंडिपेंडेंट अंदर। मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है, अपने हाथ। तो जितना इसकी प्रैक्टिस हम फरिश्ते की करेंगे, अशरीरी की करेंगे, साइलेंस की करेंगे, नॉन जजमेंटल की करेंगे, ये बहुत बड़ा खेल है। नॉन जजमेंटल का अर्थ होता है साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा का अर्थ क्या हुआ? देख रहा हूं, जिसका जो पार्ट है देख रहा हूं, उसके खेल में जा नहीं रहा हूं, ट्रैप नहीं हो रहा हूं, फंस नहीं रहा हूं, बल्कि उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं पर फंस नहीं रहा हूं। जहां मुझे एक्ट करना है वहां एक्ट कर रहा हूं, जहां मुझे एक्ट नहीं करना है वहां शांत, फिर जीरो। जहां मैं कुछ कर सकता हूं करो, जहां नहीं कर सकता बैठ जाओ। नॉन जजमेंटल का अर्थ है, एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। एक पड़ोस में, नए कैंपस में पति पत्नी रहने आए, पड़ोस में एक और पड़ोसी था। पत्नी रोज सुबह खिड़की से देखती थी पड़ोस के यहाँ कपड़े टंगे हुए हैं, और रोज पति को कहती थी देखो कितने खराब कपड़े टंगे हुए हैं, मेले हैं, धोना नहीं आता उसको। पति सुनता था। एक महीना हो गया, रोज बोले पति सुने। एक महीने के बाद देखती है कि कपड़े बहुत अच्छे धुले हुए हैं। पति को बोलती आज तो इसने बहुत अच्छे कपड़े धोए, शायद धोना आ गया, प्रॉपर किया है वॉशिंग। तो पति कहता है आज सुबह उठकर मैंने खिड़की के कांच को साफ कर दिया। गड़बड़ कहां थी? वो अपनी तरफ से जज कर रही थी। हमें किसी को जज नहीं करना, वही संकल्प चलते हैं। नॉन जजमेंटल का अर्थ है हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो प्ले कर रही है, और जो जैसा प्ले कर रही है करने दो, आप कुछ कर सकते हैं तो करो, नहीं कर सकते तो वाइब्रेशन दो। आजकल जितने क्वेश्चन मेरे पास आते हैं वो कहते हैं ये वो, मैंने कहा कर सकते हो, बोले नहीं, बोल सकते हो उसको नहीं, तो वाइब्रेशन दो। खेलिए वहां पर अनादि चक्र का, वहां पहुंच चुका है कि हर आत्मा को घर याद आ रहा है, परमधाम याद आ रहा है, सेंसिटिव हो गया है। बच्चे को भी बोला तो गड़बड़, तो इसलिए हमें बोलना नहीं है, जितना कम बोलेंगे उतना वो काम होगा। उसको शुभ भावना देते हैं, शुभ कामना देते हैं, वो होगा। क्योंकि हम आत्मा का अर्थ क्या हुआ, एक एनर्जी है, आत्मा एक एनर्जी है, वेव्स हैं, मेरी वेव्स जा रही हैं, पूरे यूनिवर्स में जा रही हैं, जितनी आत्माएं यूनिवर्स में हैं उनकी वेव्स मेरे को आ रही हैं। इसीलिए आप देखो एनिमल्स भी क्या करते हैं, जानवर भी क्या करते हैं, किसी को वो कुत्ता भोंकेगा किसी को नहीं भोंकेगा, क्यों नहीं भोंकता, वाइब्रेशन कैच करता। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमें वो कैपेसिटी दी है, पर हमने अपनी फाइल इतनी खोल दी है, अपनी कवरिंग इतनी टाइट कर दी है कि वो टच होते हुए भी कैच नहीं कर पाते। हर एक को होता, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इंट्यूजन, गट फीलिंग, इंट्यूजन इंस्टेंट गट फीलिंग। इसका अर्थ क्या होता है, हमारी आंतें, इंटेस्टाइन सेकंड ब्रेन है, एक ब्रेन यहां है एक ब्रेन ये है, ब्रेन में जो होता है वो यहां होता है। मैंने जो संकल्प लिया, डर आ रहा है, घबराहट आ रही है, तो यहां भी होगी, टाइट होगा। बच्चा कहता है ना दर्द हो रहा है पेट में, दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि स्कूल का काम नहीं किया, स्कूल जाना नहीं चाहता तो दर्द हो रहा। तो आते हमारी सेकंड ब्रेन है, ये मैं रिसर्च बता रहा हूं, डॉक्टर्स ने की है, जो यहां सीक्रेट होता है वो यहां सीक्रेट होता है, और जो अपनी गट फीलिंग से काम करता है वो मिलियनर बिलियनर बनता। ओपरा विनफ्रे अमेरिका की एक बिलियनर है, एक सिंपल घर में पैदा हुई जहां कुछ नहीं था और टॉप पर चली गई, टीवी एंकर है। उससे पूछा गया आप कैसे टॉप पर चले गए, बोला मेरे अंदर जो गट फीलिंग इंट्यूजन आता है उससे मैं काम करती हूं। इंट्यूजन का अर्थ हुआ, गट फीलिंग का अर्थ हुआ वो संकल्प जो मन बुद्धि संस्कार से भी ऊपर है। अब मैं लास्ट डेफिनेशन पर आ रहा हूं, मन बुद्धि संस्कार से भी ऊपर वाला वो संकल्प जो सडन आया, मुझे कह रहा है कर। ये सडन आता है, एकाएक आता है, जैसे न्यूटन को एप्पल देखा और उसने इन्वेंशन बना लिया, आर्किमिडीज ने पानी के टब में गया और एकदम भागा, पा लिया यूरेका, सडन आया, और उसको जो डिस्कवरी करनी थी वो कर ली, न्यूटन ने एप्पल को देखा और कर ली। ये सडन थॉट्स आते हैं, बियॉन्ड आते हैं, बियॉन्ड लिमिट आते हैं, आत्मा से भी ऊपर के आते हैं, और उनको कैच करके लिख लिया, अप्लाई कर लिया, वो व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, क्योंकि वो संकल्प पहले से ही बता देगा क्या करना है और क्या होगा। और इसीलिए इसको ट्रेन किया जाता है, मैनेजमेंट में भी सिखाया जाता है, कंपनीज में भी सिखाया जाता है, गट फीलिंग का यूज करो। इमोशनल ब्रेन लॉजिकल ब्रेन हमें एक लिमिट देते हैं, मन बुद्धि भी एक लिमिट देते हैं, संस्कार भी अपना थॉट लाता रहता है बीच में, पर इससे ऊपर आकर जो वो थॉट सडनली आया वो आपको बताता है क्या करना है। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मेरा रिमोट कंट्रोल कंप्यूटर का मैंने कहीं रख दिया जब घर कमरे पर आया। फिर मेरे को 10 दिन बाद वो चाहिए था रिमोट कंट्रोल, मेरे को मिल नहीं रहा था। ढूंढा इस बैग में, उसमें उसमें उसमें, मिला नहीं। अगले दिन प्रेजेंटेशन था, रात को सोया, जैसे ही सोया खट से संकल्प आया उस बैग में है अंदर। उसी समय उठा, रात के 12 बजे वो बैग को देखा तो वहां पड़ा था। अगर मैं उस समय इग्नोर कर देता तो फिर गया था। उसी समय उठा और देखा पड़ा है वहां। तो ये इंट्यूजन, इंस्टेंट संकल्प सडन आते हैं, और तब आते हैं जब हम पूरा डिटैच हो गए। इसीलिए मैंने कहा बीच बीच में ऐसी प्रैक्टिस करो जीरो की, जो बाबा कराता था, वैराग्य की, शमशान की, पढ़ गए। मेरे को कोई भी टॉपिक तैयार करना होता है, बीच बीच में मैं ये प्रैक्टिस करता हूं, क्या बोलूंगा, क्या नया बोलना है। वो तो है मेरे पास जो प्रेजेंटेशन है, पर क्या नया ऐड करना है, तो वो टच होता है। जब मैं इसको कट ऑफ कर दूं, जब मैं आत्मा को ब्रेन से डिटैच कर दूं, और ज्यादातर हम अटैच होते हैं अपने नेगेटिव प्रोग्राम से, उसको कट कर देते हैं, आराम से खेल खेलता है। तो स्टोरी हुई कैसे कट करना। एक गया बिजनेसमैन अरेबिया से, दो पक्षी को पकड़ के लाया, उसने राजा को दे दिया। राजा ने उनको ट्रेनर को दिया कि इनको उड़ाना सिखाओ। एक महीने बाद ट्रेनर आके कहता, एक पक्षी उड़ना सीख गया, पर एक पक्षी अभी भी डाल उसको पकड़ा हुआ है, डाल को। राजा ने कई ट्रेनर दिए पर नहीं उड़ा। फिर एक दिन एक किसान आया, बोला मैं कर देता हूँ। वो किसान आया, उस डाल को ही काट दिया, और राजा को बोला सीख गया। डाल क्या है, हमने भी जो बचपन से पकड़ रखी है, क्या है, क्या पकड़ी है, डाल। सिक्योरिटी, सुरक्षा, नेगेटिविटी, अटैचमेंट, वो पकड़ के रखें। और जैसे ही इसको छोड़ देते हैं, वो कंप्यूटर अपने आप काम करना शुरू करता है। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। डिटैच करेंगे, जीरो लेवल पे लाएंगे।